ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा के आज सवेरे के मधुर महावाक्य हम सभी ने सुने, जिसमें बाबा ने विशेष हम बच्चों को साइलेंस में जाने की प्रेरणा दी। बाबा ने कहा कि हम शांति धाम में जाने वाले हैं, तो जब शांति में रहते हैं तो हम शांति के प्रकंपन चारों ओर फैला रहे हैं, और जितनी शांति चारों ओर फैलाते जाएंगे अनेकों को उसका अनुभव होता रहेगा। इसलिए बाबा ने विशेष आज की मुरली से यही प्रेरणा दी कि तुम्हें साइलेंस में ज्यादा समय बिताना है, और बट्टी माना ही साइलेंस, जितना हो सके अंतर्मुखी होकर के भीतर जाना है, और भीतर जाकर के भीतर से स्वयं के अंदर रियलाइज करते हुए परिवर्तन करना। उसमें कुछ समय से बाबा के ये महावाक्य हम जरूर सुन रहे हैं कि बच्चे स्वयं को व्यर्थ से मुक्त करो। पिछले संडे की मुरली में भी बाबा ने कहा कि उसमें स्वयं का भी फायदा है, दूसरों का भी फायदा है, और कल संडे की मुरली में भी बाबा ने शिव जयंती के महावाक्य में यही कहा कि बच्चे ये अक के फूल बाबा को अर्पित कर दो। व्यर्थ संकल्प को बाबा ने कहा ये अक के फूल है, शिव के ऊपर चढ़ा दो। भक्ति मार्ग में ये यादगार है कि शिव के ऊपर हमेशा अक के फूल चढ़ाए जाते हैं, तो बाबा कहे ये व्यर्थ संकल्प रूपी अक के फूल तुम चढ़ा दो, और अंदर में दृढ़ संकल्प करो कि ये व्यर्थ संकल्प उत्पन्न न हो। बाबा ने कहा कि दृढ़ संकल्प करेंगे तो होना ही है, करना ही है, लेकिन अगर ये सोचा कि कोशिश करेंगे तो बाबा कहे वो हमें मजबूर कर देगा, हमारे पुरुषार्थ को ढीला कर देगा, और हम कभी उसके ऊपर विजयी नहीं हो सकते हैं। इसलिए कोशिश शब्द है ही कमजोरों का। दृढ़ संकल्पधारी जो है वो तो यही कहेंगे नहीं, हमें करना ही है, और इसलिए व्यर्थ संकल्प को अब बाबा कहते हैं फुल स्टॉप लगाओ। सहज पुरुषार्थ जो बाबा ने कल के मुरली में बताया है, तीन बिंदी लगा दो। बिंदी बनना है, बिंदी बाप को देखना है, और पुरानी बातों को भी बिंदी लगाओ, क्योंकि व्यर्थ संकल्प का मुख्य कारण क्या होता है? बीती बातें। जिसको बुद्धि से इतना पकड़ के रखते हैं, जो छोड़ना नहीं चाहते हैं, मैं भूल नहीं सकता हूं, इस बात को मैं भूल नहीं सकता हूं, और वही बातें अंदर में रिपीट होती रहती है, और मन परेशान होता रहता है, इसलिए बाबा कहते बीती बातों को फुल स्टॉप। वो बीती बातों को चितवो नहीं, बार बार उसको लाइव नहीं करो अंदर में, उसको फुल स्टॉप लगा करके बीत गया। अब 5000 साल तक ये बीत गया, आधा कल्प में तो बिल्कुल ही नहीं रहेगा। तो बाबा कहे, उस बात को पकड़ के नहीं रखो, होगा कोई समय का कोई हिसाब किताब, वो पूरा हुआ, जिस आत्मा के साथ भी हुआ हो पूरा हो गया। इसलिए व्यर्थ संकल्प की ये जड़ है पुरानी बातें। दूसरा कारण है व्यर्थ संकल्प क्रिएट होने का, व्यर्थ देखना, व्यर्थ सुनना और व्यर्थ संग में आना, ये कारण बनता है व्यर्थ संकल्प को क्रिएट करना। व्यर्थ देखना, बाहर की दुनिया को तो शायद इतना नहीं देखते हैं स्थूल आंखों से, लेकिन आजकल हरेक के हाथ में जो खिलौना आ गया है, ये खिलौने बहुत व्यर्थ दिखाता रहता है ना? और इसलिए जहां देखो वहां हर कोई क्या करता है। ब्राह्मण बनने के बाद हम सभी गुटखा तंबाकू तो नहीं खाते हैं, लेकिन ये डिजिटल गुटखा तंबाकू बहुत सेवन हो जाता है। इसको हम कहते हैं डिजिटल, ये करते रहते तो उसको क्या कहते, वो क्या करते हैं तंबाकू में भी क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करते रहते ना, तो सारा दिन मोबाइल को ऐसे ऐसे करना, ये क्या हो गया, डिजिटल तंबाकू हो गया। उसका सेवन ज्यादा होता है और वही हमारे संकल्पों को दूषित कर देता है। उस पर व्यर्थ सुनना, ये भी मन को दूषित कर देता है। और जहां मन दूषित होता है वहां व्यर्थ संकल्प क्रिएट हो जाता है अपने आप। इसलिए बाबा कहते हैं ये साधन बहुत अच्छी चीज है, आपके लिए ही बने हैं, परंतु उस पर लगाम जरूर लगानी चाहिए। अगर लगाम नहीं होगा तो वह फिर मन को और दूषित करता रहेगा और व्यर्थ संकल्प एक के बाद एक क्रिएट होते रहते हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं व्यर्थ से मुक्त होना है तो कैसे होंगे। व्यर्थ संकल्प जो चलता है ये सिद्ध करता है कि मन कमजोर है, उसके पास अच्छा सोचने की ताकत नहीं है। समझ है कि हमें समर्थ सोचना चाहिए, अच्छा सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, ये समझ है, लेकिन व्यर्थ को बंद नहीं कर पाते हैं। उसका मुख्य कारण है कहीं न कहीं मन कमजोर हो गया है। जैसे कोई शारीरिक रूप से कमजोर हो जाए तो फिर उसके बाद जैसे थोड़ा चलना फिरना भी उसको भारी लगने लगता है, तो उस आत्मा को जो फिजिकली कमजोर है उसको सशक्त करने के लिए एक्सरसाइज जरूर बताते हैं, एक्सरसाइज करो, थोड़ी थोड़ी भी एक्सरसाइज शुरू करो। जितने थोड़ी थोड़ी भी एक्सरसाइज शुरू करते हैं धीरे धीरे शरीर में भी ताकत आने लगती है, उसके बाद फिर आगे बढ़ना सहज हो जाता है, चलना कितना भी हो सहज हो जाता है। तो एक्सरसाइज कराना जरूरी है। ठीक इसी तरह मन जो कमजोर हो गया है इतना, उसको भी एक्सरसाइज की जरूरत है। और मन के लिए एक्सरसाइज कौन सी है? कौन सी एक्सरसाइज है? हाँ, ड्रिल, जो बाबा हम बच्चों को कई बार ड्रिल कराते हैं। और ड्रिल में भी जो सबसे पावरफुल ड्रिल जो बाबा हमें कराता है वो है पांच स्वरूप की ड्रिल। बाबा ने कहा कम से कम 8 बार तो जरूर करनी चाहिए ये ड्रिल। और जितना ये ड्रिल करते जाएंगे धीरे 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 मन सशक्त होने लगेगा, शक्तिशाली बनने लगेगा। मन शक्तिशाली होगा तो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर उसके ऊपर आएगा। मन कमजोर होगा, उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, उसके ऊपर रूलिंग पावर नहीं आती है। इसलिए पहले उसको ये ड्रिल कराते हुए, चाहे पांच स्वरूप की ड्रिल करो, चाहे साकारी आकारी निराकारी में आने जाने की ड्रिल करो, चाहे मधुबन के चार धामों की ड्रिल करो, आप जिस भी ड्रिल से आप कंफर्टेबल फील करो वो ड्रिल सहजता से करो। और जितना ये ड्रिल करेंगे निराकारी आदि स्वरूप, देव स्वरूप, पूज्य स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, ये ड्रिल जितनी हमारी होती जाएगी उतना मन सशक्त होने लगेगा। इसलिए मन को शक्तिशाली बनाना बहुत जरूरी है। दूसरा आधार मन को शक्तिशाली बनाने के लिए बाबा कहते उसको समर्थ संकल्प दो। और समर्थ संकल्प का स्रोत है बाबा की मुरली। जितना मुरली का अध्ययन होता रहेगा उतना ही मन सशक्त होता जाएगा, शक्तिशाली बनेगा। तो बाबा के रोज की मुरली हमें ऐसा खुराक दे देती है जिस खुराक को खाने से मन सशक्त जरूर बनता है, शक्तिशाली बनता है। तो जहां एक तरफ ड्रिल हो एक तरफ खुराक हो, दोनों बातें अगर होती है तो मन शक्तिशाली जरूर बनता है। इसलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे व्यर्थ संकल्प से अगर मुक्त होना है तो समर्थ संकल्पों का खजाना मुरली द्वारा प्राप्त करो। ज्ञान सागर के ये ज्ञान का खजाना है। कुछ समय पहले बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी साकार मुरली के अंदर कि अगर तुम लोगों की सबकी डायरियां इकट्ठी किया जाए तो कितने कमरे होंगे। इतने तो शास्त्र भी नहीं बने हैं दुनिया के अंदर जितने ज्ञान सागर की मुरली की किताबें तुम्हारी भरती है। अर्थात इतना समर्थ संकल्पों का खजाना। दुनिया के आत्माओं में व्यर्थ चले ये तो स्वाभाविक बात है क्योंकि उनके पास समर्थ का खजाना नहीं है, उनके पास सारे सोर्सेस व्यर्थ के ही है। लेकिन बाबा कहे तुम बच्चे तो कितने पद्मा पदम भाग्यवान है कि रोज सुबह सुबह तुम्हें ज्ञान मुरली का जो पावरफुल डोज मिलता है उससे आत्मा शक्तिशाली बन जाती है। और बाबा ने तो हम बच्चों को यहां तक कहा है कि बच्चे तुम इसका मनन करते जाओ तो मनन करने से अंदर में वो हजम होगा, उसकी ताकत बनेगी। जैसे भोजन को हजम करने से शारीरिक ताकत बनती है, ठीक इसी तरह ये ज्ञान मुरली का जो खजाना मिलता है उसको भी मनन करते हुए हजम करो तो अंदर आत्मा सशक्त शक्तिशाली बन जाएगी। तीसरी विधि बाबा ने जो बहुत सुंदर कल की मुरली में आप सुनेंगे, बाबा ने कहा कि बच्चे अमृत वेले बैठ करके बाबा से कहो, ओ मेरे प्यारे बाबा, ओ मेरे मीठे बाबा, दयालु कृपालु बाबा, आज से हम ये व्यर्थ का जो संस्कार है उसको आपको दे देते हैं और दे दो। बाबा कहते बच्चों ने ये कई बार अनुभव किया है कि जब आप दिल से कहते हो मेरा बाबा तो हुजूर हाजिर हो जाता है, ये अनुभव है। तो जब आप दिल से अर्पण करेंगे रियलाइज करते हुए तो बाबा भी ले लेगा। दिल से कहो तो सही, बाबा कहे दिल की बात है, ये नहीं ऊपर ऊपर से कह दिया बाबा ले लो आप, नहीं ऐसे बाबा नहीं लेगा। दिल से आपकी भी चाहना होनी चाहिए कि हाँ मुझे इससे मुक्त होना ही है, और इसलिए बड़े दिल से आप जब ये बात बाबा को देंगे तो बाबा भी ले लेगा, और रिटर्न में बाबा भी आपको एक बहुत सुंदर गिफ्ट देगा। कौन सी गिफ्ट? मदद की, क्योंकि आपने हिम्मत की है तो बाबा भी मदद की गिफ्ट आपको जरूर देगा। तो इसीलिए बाबा कहे दिल से कहो, हिम्मत रखो तो बाबा जरूर ले लेगा। अनुभव होगा आपको कि मैं इससे फ्री हो गई हूं। दूसरा जो व्यर्थ का मुख्य कारण होता है, तीन बातें, वो तीन बातें छोड़नी है और उसके बदले में तीन बातों को धारण करना है। तो तीन बातें छोड़नी कौन सी है जो व्यर्थ क्रिएट करने वाली होती है? वो है पर चिंतन, पर दर्शन और पर मत का प्रभाव, ये व्यर्थ को क्रिएट करने वाला है। तो उससे मुक्त होना है तो स्वचिंतन आरंभ करो, शुभ चिंतन आरंभ करो, स्वदर्शन करो और श्रीमत के प्रभाव में रहो। तो तीन बातें छोड़ने के लिए ये तीन बातों को धारण करना है, क्योंकि अगर खाली जगह रही तो फिर वो आने की संभावना रहती है, इसलिए रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। तो स्वचिंतन यानी आत्मचिंतन हम करते जाए, बार बार आत्मनिरीक्षण करते हुए आत्मचिंतन करे, स्वदर्शन करे, अपने आप को देखे, पहले क्या थे हम, धीरे धीरे परिवर्तन होते होते क्या बन गए हैं और आगे भी मुझे क्या बनना है, वो अपना भविष्य स्वरूप बहुत क्लियर सामने हो, ये स्वदर्शन करना है। ये तो कोई नहीं कह सकता है कि बाबा के बनने के बाद मुझ में कोई परिवर्तन नहीं आया, ऐसा कोई कह सकता है? सब कुछ तो बदल गया, हमारी पूरी अपनी दुनिया बदल गई, हमारे संकल्प की दुनिया बदल गई, सोचने का तरीका ढंग बदल गया, सब कुछ बदल गया है। तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे जब आप स्वचिंतन और स्वदर्शन करेंगे तो पाएंगे कि सचमुच कहां थे और कहां पहुंच गए और अब आगे कहां पहुंचना है। हर दिन भले वो परिवर्तन की प्रक्रिया बहुत ग्रेजुअल है लेकिन हर दिन परिवर्तन हो रहा है, शायद हमें महसूस नहीं होता हो, दिखाई नहीं पड़ता हो, लेकिन हर दिन थोड़ा 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 परिवर्तन हुआ है। तब आज जब देखते हैं कि भाई क्या थे बाबा के बने या उससे पहले हमारा जीवन कैसा था और अब कैसा हो गया है, तो कोई ये नहीं कहेगा कि भाई बाबा के बनने के बाद हमारे में तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। बहुत कुछ बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है, और आगे भी हमें अपनी मंजिल पर जब पहुंचना है तो उसके लिए परिवर्तन की ये प्रक्रिया भले आज स्लो है लेकिन हो रही है। अंदर में कुछ न कुछ बदलाव हो रहा है और बदलते ही हम जा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं डायरेक्शन के लिए, दिशा हमारी सही बनी रहे उसके लिए श्रीमत के प्रभाव में रहो। बार बार अपने आप को देखो कि कहीं श्रीमत या मर्यादा के बाहर कदम तो नहीं जा रहा है। अमृत वेले से लेकर रात्रि तक जो बाबा की श्रीमत है, मर्यादा है, उस प्रमाण हमारा चल रहा है, तो आप देखेंगे कि जैसे सचमुच उस प्रमाण ही चल रहा होगा। और यही परिवर्तन की प्रक्रिया को और ज्यादा तीव्र करेगा। तो इसलिए ये तीन बातों को छोड़ना है, तीन बातों को धारण करना है। चौथी बात, व्यर्थ का कारक और एक है, वो है मैं और मेरा। मैं और मेरा, उसमें बाबा ने बहुत सुंदर बात कल की मुरली में बताया है। कल की मुरली सारी उसी के ऊपर है। तो कल बाबा ने बहुत सुंदर बात बताई है कि एक होता है साधारण मैं और दूसरा होता है महीन मैं। एक है साधारण मेरा, दूसरा है महीन मेरा। साधारण मैं कौन सा है? अभिमान वाला मैं, उसको बाबा ने साधारण कहा। मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, ये है साधारण मैं। लेकिन महीन मैं कौन सा है? महीन मैं है जो बाप की देन है उसको अपनी समझ करके उसका अभिमान करना। बाप की देन क्या है? बाबा के बनने के बाद बाबा ने हमारे अंदर कितनी विशेषताएं भरी है जो पहले नहीं थी, लेकिन बाबा के विशेषता की देन है ये। लेकिन उस विशेषता का घमंड करना, अभिमान करना, ये मेरी विशेषता है, ये है सूक्ष्म या महीन मैं और मेरा, कि ये मेरी ही विशेषताएं हैं। मैं इस विशेषता के आधार से कितनी सेवा कर रहा, ये सब है महीन मैं और मेरा। तो इसलिए बाबा कहते उसको आइडेंटिफाई करो, उसको परखो और देखो कहीं पर भी बाबा की देन को हम मैं कह करके या मेरा कह करके अभिमान तो नहीं दिखा रहे हैं। नहीं तो क्या होगा, जितना उसका अभिमान होता जाएगा धीरे धीरे वो विशेषता समाप्त हो जाएगी, निकल जाएगी, क्योंकि पात्र नहीं है उस विशेषता को ग्रहण करने के। वो अभिमान के पात्र में वो विशेषता नहीं रह सकती है, इसलिए वो विशेषता फिर धीरे धीरे गायब हो जाएगी, माया उसको छीन लेती है, कहेंगे तुम उसके पात्र नहीं हो। भगवान ने भले तुम्हें दे दिया लेकिन तुम उस विशेषता के, उस योग्यता के पात्र नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं ये सूक्ष्म मैपन, मेरापन, ये बहुत तकलीफ देगा। उसके आधार पर जब व्यक्ति ये सोचने लगता है मेरा नाम हो, मेरा शान हो, मेरा मान हो, तो बाबा कहते हैं ये बहुत कष्ट देने वाला है। बहुत अगर नहीं मिला तो बहुत व्यर्थ संकल्प को क्रिएट करेगा, और जहां अभिमान है वहां अपमान की फीलिंग में जरूर आएंगे। लेकिन उसके रिप्लेसमेंट में बहुत सुंदर बात बाबा ने कही, बच्चे बाबा ने कितने स्वमान दिए हैं, उस स्वमान के शुद्ध नशे में आ जाओ, अभिमान को समाप्त करते हुए स्वमान में अपने आप को स्थित करो, और उस स्वमान में स्थित होकर के खुद को भी देखो, दूसरों को भी उस दृष्टि के माध्यम से देखो, तो हर एक में अच्छाई दिखाई देने लगेगी, कहीं पर भी घमंड नहीं आएगा। क्योंकि जैसे बाबा ने मुझ में ये विशेषता भरी है, बाबा ने उसके अंदर ये विशेषता, तो उसकी भी अच्छाइयों का दर्शन होने लगेगा। और जब इस विधि से, निमित्त भाव से और निर्माण भाव से उस विशेषता का प्रयोग करते जाएंगे, तो वो विशेषता वृद्धि को प्राप्त होती है, निखरने लगती है, और जितना उसका निखार आता है उतना ही स्वयं भी महसूस करेंगे, बाबा करण करावनहार करा रहा है, मैं तो निमित्त हूं, बाबा करा रहा है, बाबा यूज कर रहा है, उसकी खुशी अनुभव होगी। जहां अभिमान आया वहां खुशी गायब हो जाएगी, माया वो खुशी में रहने नहीं देंगी। तो इसीलिए बाबा कहते हैं माया चांस तो ढूंढती रहती है, तो सावधान हो जाना है कि बाबा की देन है, बाबा की दी हुई विशेषता है, उसका अभिमान मैं नहीं कर सकती हूं, लेकिन उस स्वमान में स्थित होकर के जितना हो सके स्वमान, उस विशेषता का मान मुझे रखना है जो बाबा ने दी है, और उस विशेषता का मान रखते हुए, उसका रिस्पेक्ट रखते हुए जितना हो सके अधिक से अधिक प्रयोग करना है। यह है स्वमान, उस विशेषता का मान रखा। अभिमान वाला क्या करता है, उस विशेषता का मान नहीं रखता है। जैसे ही उसको किसी ने रिकॉग्निशन नहीं दिया, एप्रिसिएशन नहीं किया, क्या होगा, अब आगे से मुझे करना ही नहीं है, आगे से मुझे करना ही नहीं है। अब जब मैं ये कहती हूं आगे से मुझे इस विशेषता का प्रयोग करना ही नहीं है, तो मैंने मान रखा या मैंने अपनी विशेषता, बाबा की दी हुई विशेषता का अपमान किया, और अपमान किया तो वो विशेषता बनी रहेगी या चली जाएगी, चली जाएगी। लेकिन जितना उसका मान रखते हुए कि भगवान की दी हुई है, उसका अधिक से अधिक प्रयोग करते हुए मुझे दूसरों को सुख देना है, इस विशेषता का सुख देना है, माना मैंने मान रखा, तो वो निखरती भी जाएगी और फलीभूत होती जाएगी। उससे इतनी दुआएं कमाते जाएंगे, इतनी दुआएं मिलती जाएगी, जो आप खुद हर पल महसूस करेंगे कि उस दुआओं में आप पल रहे हैं। ये है विशेषता का मान रखना, भगवान की दी हुई देन जो है उसका मान रखना, और मान रखते हुए उसका प्रयोग करना, दूसरों को सुख देना, ये है स्वमान, सेल्फ रिस्पेक्ट। अभिमान वाला, जैसे ही अगर किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया कि आपने बहुत अच्छा कहा या बहुत अच्छा आपने ये किया, अप्रिशिएट, आगे से मुझे करना ही नहीं है, छोड़ दिया मैंने, अभिमान आया ना, छोड़ दिया। तो जब मुझे ही रिस्पेक्ट नहीं है तो वो देन मेरे पास रहेगी। भगवान भी कहता है तुम मान तो रखता नहीं है, जो तुम्हें मिला है उसका मान तो है नहीं। तो धीरे धीरे वो गायब होने लगेगी। फिर कई बार कई लोग महसूस भी कर, पहले जितना अच्छा कर सकते थे ना उतना नहीं हो पाता है अभी मेरे से, क्यों? कहीं न कहीं अभिमान में आकर के मैंने उसका दुख दिया, उस विशेषता के माध्यम से किसी को दुख दिया। तो दुआएं कमाने के बजाय बददुआएं आ गई मेरे खाते में, इसलिए धीरे धीरे वो गायब होने लगती है, वो चीज नहीं रहती है जो पहले थी, ये फील करते हैं। दूसरा, जैसे बाबा ने स्वमानों की लिस्ट दी है, कितने स्वमान है, कितने स्वमान होंगे बाबा ने दिए हुए। एक बुजुर्ग माता, 85 इयर्स की माता, उसने मेरे को आकर बताया, मैंने बाबा के मुरली से स्वमान की लिस्ट निकाली। मैंने कहा अच्छा कितने कितने हैं, कितने स्वमान हैं? उसने लिखा अपनी डायरी के अंदर 1700 स्वमान। अब सोचो, उसने कहा मैंने बाबा की मुरलियों से रोज 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 का स्वमान मैं लिखती गई और 1700 स्वमान निकाले उसने। एक बुजुर्ग माता बैठे बैठे 1700 स्वमान निकालती है, ये हम सब का काम नहीं है। अब आप सोचो कि वो बुजुर्ग माता अगर बैठ के रोज की मुरली से स्वमान निकालती जाए और 1700 स्वमान एक साल के अंदर उसने निकाला, उसकी बुद्धि में व्यर्थ चलने की मार्जिन नहीं। 85 इयर्स की एज में वो ऐसा पुरुषार्थ कर रही है। फिर मैंने कहा अच्छा माता और क्या क्या निकाला तुमने? तो कहा मैंने बहुत कुछ निकाला है। मैंने कहा अच्छा क्या निकाला? तो उसने बताया कि शिव बाबा रोज जो मुरली में कहते हैं मैं क्यों आता हूं, उस बात को लेकर के शिव बाबा क्यों आता है। कभी कहते पतित पावन है तो पावन बनाने आता हूँ, कभी कहते वर्षा देने आता हूँ, कभी कहते ये राजयोग सिखाने के लिए आता हूँ। तो वो चीज निकाली उसने, मैं गिनती भूल गई उसकी, लेकिन कम से कम उसने कहा कि वो भी 500 से ऊपर है। बाबा क्यों आता है, वो मुरली ऐसे सुनती है, सीखने को मिला कि कैसे मुरली सुनना चाहिए। उसने अपनी डायरी इस तरह से बनाई है, बाबा क्यों आता है। वो उस पेज पर जाती है और लिख देती है बाबा क्यों आता है, और 500 से ऊपर उसने वो निकाला बाबा क्यों आता है। फिर शिव बाबा के नाम, ब्रह्मा बाबा के नाम, जो बाबा कई बार मुरली में कहते कि ब्रह्मा बाबा मेरी वन्नी है, ब्रह्मा बाबा लॉन्ग बूट है, वो निकाला 108 ब्रह्मा बाबा के नाम निकाले मुरली से। सोच सकते हैं इतना नाम होगा? मैंने कहा माता तेरा तो व्यर्थ चलता ही नहीं होगा। कहा नहीं चलता है, मैं रोज 85 इयर्स की है, 85 अभी तो ज्यादा हो गई होगी, 86 हो गई होगी, तो इतना मनन चिंतन अगर वो कर। हम कहते मुरली तो एक ही जैसी होती है ना, कई बार कई भाई बहने क्या कहते हैं, एक ही जैसी मुरली होती है ना। अरे देखो, अगर एक बुजुर्ग माता और अकेली रहती है, रोज बाबा के लिए भोग बनाती है, इतना बिजी रहती है, कभी खाली नहीं बैठती है, कहते मैं और मेरा बाबा सारा दिन, कोई आता है तो कोर्स कराती है, बहनें भी उसको भेज देती है, घर पे उसके भेज देती है, उसका घर अकेली रहती है बाबा के साथ। बहनें भी जब बिजी होती है तो कहते अच्छा ये माता के पास चले जाओ, वो तुम्हें कोर्स कराए। जो उसका स्टूडेंट होगा ना बहुत बहुत पक्का हो जाता है, बहुत पक्का हो जाता है। तो खुशी होती है ऐसे बाबा के रत्नों को देख करके कि देखो कैसे बाबा के एक एक रत्न है ना। तो इसलिए कहा कि स्वमान जो 1700 स्वमान है, एक एक स्वमान में हम रोज टिके तो भी कितना हो जाएगा, कितने साल लग जाएंगे हा? और रोज का एक नया अनुभव होगा, रोज का नया अनुभव होगा। भावार्थ ये कि बाबा जब कहते हैं तो स्वमान में स्थित रहो। स्वमान बाबा ने जो विशेषता दी है उसका मान रखो, उसको प्रयोग करो, अधिक से अधिक लोगों को सुख दो, ये है स्वमान, उसका मान रखना। नहीं तो हम अपमान करते रहते हैं तो वो विशेषता समाप्त हो जाती है। पांचवा कारण व्यर्थ चलने का, कोई भी घटना देखते हैं, कोई भी जीवन में ऐसी बात आती है तो अक्सर मनुष्य सोचता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैंने तो कभी किसी का बुरा किया नहीं, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है। और फिर उसका व्यर्थ शुरू हो जाता है, क्यों, क्या, कैसे, ऐसे वैसे। ये सवाल जो है ना, ये सवाल क्यों क्या कैसे, वो सवाल ही व्यर्थ को क्रिएट करता है। इसीलिए बाबा कहते हैं उसको जंगल, प्रश्नों के जंगल में मत चले जाओ, वो समस्याएं क्रिएट करेगी। प्रश्नों के जंगल में जितना जाते हैं उतना समस्या ही क्रिएट होती है। कई लोग कहते हैं मैंने है ना फलानी बात फलाने से निकलवाई, इतने प्रश्न उसको किए, कितना खोद खोद करके निकाला, बड़ी चालाकी से मैंने ये बात निकाली उसे। अच्छा निकालने के बाद क्या हुआ, निकालने के बाद क्या हुआ, कहते इसे तो नहीं जानते थे ना तो अच्छा था। जानने के बाद दुखी हो गए हम कि ऐसा भी होता है, नहीं जानते थे तो सुखी थे। तो जान करके खोद खोद के क्या निकाला, हीरा मोती थोड़ी निकाला, क्या निकाला, मिट्टी और पत्थर ही निकाला ना। और फिर दुखी हो गए और दुखी होकर के फिर व्यर्थ चलना चालू हो गया, फिर कहते इसे तो नहीं जानते थे तो और अच्छा होता था। तो क्यों उस प्रश्नों के जंगल में जाते हैं, इसलिए बाबा कहते क्वेश्चन मार्क का टेढ़ा रास्ता मत अपनाओ, वो सुख नहीं देता है, वो कांटे चुभोता है। जंगल में जाएंगे तो कांटे ही लगेंगे, वो कांटा चुभाता है, उसके बदले हाईवे का रास्ता लो ना, है ना। बाबा ने क्या कहा है, बस उस पर चलो। कोई बात हो गई, ड्रामा, फुल स्टॉप। यही सोचो ड्रामा कल्याणकारी है, और ड्रामा कल्याणकारी है तो ड्रामा जब कल्याणकारी है तो कभी हमारा नुकसान नहीं कर सकता। कहा जाता है, दादियां कहती थी कि मम्मा हमेशा कहती थी ड्रामा हमारी माँ है। जिस तरह ड्रामा में कोई सीन अगर आती है तो उस सीन से या तो सीख मिलती है, अनुभव मिलता है, सावधान होते हैं, ड्रामा हमारा कल्याण कभी नहीं करेगी। ड्रामा जब है ही कल्याणकारी, तो बाहर की परत कितनी भी अकल्याण की दिखाई देने वाली हो, लेकिन अंदर में कल्याण ही समाया होता है। अकल्याण हो नहीं सकता है हमारा। इसलिए बाबा कई बार कहते, बच्चे धैर्य धरो, ये सीन जो आई एकदम रिएक्ट नहीं करो, किसी बात को लेकर के गुस्से में नहीं आ जाओ, एकदम तिल मिला नहीं उठो, लेकिन थोड़ा धैर्य धरो, देखो, वेट एंड वॉच। आप खुद महसूस करेंगे कुछ समय के बाद, ये कहेंगे अच्छा हुआ था, ऐसा हुआ था, नहीं तो पता थोड़ी चलता था, अच्छा हुआ ना। तो ड्रामा अच्छा ही है, हर घड़ी अच्छे से अच्छी है, बस कभी कभी धैर्य रखते हुए शांत रहना होता है, जल्दी रिएक्शन में ना आए। हम कभी कभी अधीर्य हो जाते हैं, और अधीर्य होने के कारण जो है रिएक्टिव मोड में चले जाते हैं। जब रिएक्टिव मोड में चले जाएंगे, तो जो सीख होती है, जो अनुभव होता है, वो भी नहीं मिलता है, और जो कल्याण है, जो होने वाला था कल्याण, उसमें समाया, रिएक्टिव मोड में जाकर के और भी उसको उल्टा कर दिया, तो कल्याण फिर दिखाई नहीं देता है, उल्टा हो गया वो। तो जब उल्टा हो गया तो कल्याण कहाँ रहा, फिर रहा ही नहीं। इसलिए कभी कभी ज्ञान की पराकाष्ठा को समझते हुए या ज्ञान की परिपक्वता को स्वयं के अंदर लाते हुए वेट एंड वॉच, धैर्य धरो और देखो, ड्रामा की सीन को देखो, अंतर्मुखी होकर के, डिटैच होकर के, साक्षी होकर के देखेंगे तो थोड़े ही समय के अंदर आप देखेंगे उसमें क्या कल्याण समाया हुआ था। बाप जहां कल्याणकारी, ड्रामा मां जहां कल्याणकारी, तो हमारा अकल्याण करने की हिम्मत या ताकत किसी की है? तो क्यों व्यर्थ चलाए? व्यर्थ चलाने के बदले फुल स्टॉप रखो बुद्धि को। ड्रामा कल्याणकारी है, हमारा अकल्याण हो नहीं सकता है। कोई भी दृश्य देखते हुए कहो, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह, वाह वाह के गीत गाते चलो और देखो वाह वाह होता है कि नहीं होता है। अगर बुरा होगा तो भी वाह वाह बन जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। गाके तो देखो वाह वाह के गीत, वाह बाबा है, वाह रे मैं हूं, वाह मेरा भाग्य है, वाह संगम युग है, वाह ड्रामा वाह है। जब सब कुछ इस समय में वाह वाह ही है, तो हाई हाई करने की जरूरत है क्या? हमें दुखी होकर के हाई हाई करे, व्यर्थ संकल्प क्रिएट करे, ऐसी जरूरत है क्या? नहीं। वाह वाह के गीत गाओ तो देखो वो दृश्य भी वाह वाह बन जाएगा। इतनी पॉजिटिव विजन अपनी बना ले, ड्रामा के ज्ञान को इतना गहराई से अंदर में धारण कर ले कि हमारा अकल्याण हो नहीं सकता है, ये दृढ़ विश्वास हो, दृढ़ निश्चय हो कि ड्रामा इतना कल्याणकारी है, हमारा कल्याण कोई कर नहीं सकता। और अनुभव ये होगा कि अगर कोई पीछे से धक्का मारने की कोशिश करे, इसको गिरा देते हैं। धक्का मारने की कोशिश भी करेंगे प्रैक्टिकल लाइफ में, गिराने के मकसद से, तो गिरने के बजाय ये अनुभव होगा पंख लग जाएंगे, आप उड़ जाएंगे, गिर नहीं सकते हैं, इतना ड्रामा कल्याणकारी है। आपको पंख लग जाएंगे, आप उड़ जाएंगे गिरने के बजाय, वो देखता रहेगा, अरे इसको तो हमने धक्का मारा था, ये तो उड़ने लगा है। खुशी में उड़ते रहेंगे, उड़ाते रहेंगे, गिर नहीं सकते हैं। गिरेंगे कहीं ना कहीं अपनी कमजोरी से। जहां अपनी कमजोरी का प्रयोग हुआ, बहुत ज्यादा व्यर्थ संकल्प चलाया, वो हमें गिराता है फिर। क्यों? क्योंकि विचार एक ऊर्जा है, थॉट एनर्जी है। जिस तरह की एनर्जी हम क्रिएट करते हैं अपने आप के लिए, अगर व्यर्थ सोच करके नेगेटिव एनर्जी हम क्रिएट कर रहे हैं, वो गिराएगी ना। गिराने वाला कौन है? किसी के शब्द मुझे गिरा नहीं सकते हैं। लेकिन उसके बाद मेरा व्यर्थ संकल्प जो उसके ऊपर चलता है, और वो नकारात्मक ऊर्जा जो मेरी क्रिएट होती है, वो नकारात्मक ऊर्जा मुझे गिराएगी। किसी के शब्द गिरा नहीं सकते हैं। ताकत नहीं है किसी के शब्द में आज दुनिया के अंदर जो आपको गिरा सके। इसलिए बाबा कहते, बच्चे वह वह के गीत गाओ, वह वह सोचो, पॉजिटिव सोचो, सकारात्मक सोचो, ड्रामा कल्याणकारी है ये सोचो, तो ये पॉजिटिव ऊर्जा क्रिएट करेगी। और ये ऊर्जा क्या करेगी? आपको गिरने नहीं देंगी, आपको हमेशा ऊंचा उठाएगी, उड़ाएगी। इसलिए ये ऊर्जा को आप बहुत संभाल करके अपने पास महसूस करो, कि कहीं ये नकारात्मक ऊर्जा में परिवर्तन न हो जाए। हमारी थॉट में, हर एक संकल्प में कितनी ऊर्जा है, कितनी ऊर्जा है, कितनी पावर है, शक्ति है। इसलिए उसका बड़े सावधानी से प्रयोग करना है जीवन के अंदर। वाह वाह के गीत, इसीलिए बाबा कहते सहज है, गांव वाले अनपढ़ भी ये वाह वाह के गीत गा सकते हैं। वो तो गा लेते हैं, लेकिन पढ़े लिखे कभी कभी नहीं गा सकते हैं। क्या कहे? यही कहे, पढ़े लिखे नहीं गा सकते हैं ये गीत को। और क्या कहते हैं? हम तो प्रैक्टिकल सोच रहे हैं, प्रैक्टिकल नहीं है ये व्यर्थ संकल्प चलाना, ये प्रैक्टिकल नहीं है, मोस्ट इम्प्रैक्टिकल है। जो आप अपनी ऊर्जा को समझे ही नहीं, और उस ऊर्जा को कितना व्यर्थ गंवा रहे हैं। इसलिए बाबा कहते हैं, पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव ऊर्जा को अपने अंदर क्या करो, मल्टीप्लाई करो। और वो ऊर्जा से आप देखेंगे, अकल्याण की चीज अगर होगी, वो भी परिवर्तन होकर आपके लिए कल्याणकारी बन जाएगी, बन जाएगी। इसलिए अपने संकल्पों की ऊर्जा को महसूस करना है और उसको संभाल के रखना है। ये कवच हमेशा हमारा धारण होना चाहिए। और विशेष बात, व्यर्थ का क्रिएशन क्यों होता है? भय, डर। जहां डर और भय आता है ना, पता नहीं क्या हो जाएगा, पता नहीं ऐसा हो गया तो, पता नहीं वैसा हो गया तो, पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं, तो बाबा कहते उसका पत्ता कटता ही है, कटना ही है। और जहां भय है, तो खाली व्यर्थ संकल्प क्रिएट नहीं कराता है, लेकिन झूठ भी बुलवाता है, झूठ भी बुलवाता है। डर है ना, कई लोगों को आप देखेंगे, कोई बात पूछेंगे ना, वो झूठ बोल देते हैं, और आपको पता चल जाता है ये झूठ बोल रहा है। लेकिन वो झूठ क्यों बोल रहा है? भय बुलवा रहा है। अब भय ये शक्ति है या कमजोरी है? क्या कहेंगे? कमजोरी है। जो व्यक्ति भयभीत है अंदर से, जिसको हर बात में डर लगता हो, वो व्यर्थ चला चला कर कितना कमजोर हो रहा है, वो शक्तिशाली तो नहीं है। और इसलिए वो कमजोरी का ही सपोर्ट लेगा। डर कमजोरी है, व्यर्थ संकल्प चलाकर और ऊर्जा उसके क्षीण करता है, तो वो सहारा किस चीज का लेगा? वो शक्ति का सहारा नहीं ले सकता है, वो कमजोरी का सहारा, इसलिए झूठ का सहारा पकड़ लेता है। और जहां झूठ का सहारा पकड़ा, और कमजोर होना है, और कमजोर होना है। लेकिन सोचो कि उसके झूठ के कारण आपको गुस्सा आ जाए, आपको समझ में आया किसने झूठ बोला और आपको गुस्सा आ जाए एकदम। अब गुस्सा शक्ति है या कमजोरी है? तो एक कमजोर व्यक्ति, आप सुबह अमृत वेला किया, मुरली क्लास किया, सब करने के बाद जैसे ही कार्य क्षेत्र पर गए, उस व्यक्ति तो कमजोर था, डर के कारण उसने झूठ का सहारा पकड़ लिया और झूठ बोला और आपको पता चला और आप गुस्से में आ गए। तो एक शक्तिशाली सशक्त व्यक्ति को, जिसने ज्ञान योग किया है, उसको कमजोर बना देता है, तो पावरफुल कौन हुआ? वो हुए, आप हुए। एक कमजोर व्यक्ति के परवश हो गए आप गुस्से में आकर के। ज्ञान योग किया है तो शांति बनी रहनी चाहिए ना, और शांति होगी और आप शांति से अगर उसको हैंडल करेंगे, या बाबा कहते अगर उसने झूठ बोला, आपने समझ लिया, गुस्से में ना आकर के आप शांति रख करके वहां से चले जाओ, उस स्थान से निकल जाओ, वहां इतनी नकारात्मक ऊर्जा है, उस स्थान में टिकना जरूरी नहीं है, क्योंकि वो आपको भी नेगेटिव बनाएगा। तो इसीलिए कहा वो कमजोर है, भयभीत है, उसने सहारा झूठ का लिया और झूठ का पकड़कर इतना व्यर्थ चला रहा है, अंदर में वातावरण पूरा नकारात्मक कर दिया है उसने। और ऐसे समय पर आप आकर के, आपको पता चला, आपने गुस्सा कर दिया, तो परवश हो गए। क्या करना चाहिए? ऐसे समय पर शांत रह करके, अगर ज्ञान योग किया है आपने, शांत रह करके आप वहां से चले जाओ। ठीक है, कोई बात नहीं, समझ लिया ना झूठ बोल रहा है, आपके गुस्सा करने से वो सच बोलने वाला तो नहीं, और भयभीत हो जाएगा, इसलिए वहां से चले जाना ही समझदारी है। और जाकर के आप शांत रहिए, बाबा को याद करिए। अब ये व्यक्ति के अंदर चलेगा कि साहब मालूम तो पड़ गया है, मैंने झूठ बोला ये भी समझ लिया है, उसके अंदर कशमकशी चलेगी, युद्ध चलेगा, सर ने कोई गुस्सा तो किया ही नहीं, अगर मैं सच बोल देता था तो भी गुस्सा नहीं करना था, जब झूठ बोला तभी गुस्सा नहीं किया, तो सच बोल देता था तो भी नहीं करता था, लेकिन पता नहीं क्या होगा, है ना? ये कशम कशी चल रही है अंदर में, एक युद्ध चल रहा है, एक संघर्ष चल रहा है। आधा पौना घंटा संघर्ष चलने के बाद उसको आता है मन में, मैं सच जाके बता ही देता हूं, जो होगा देखा जाएगा। हिम्मत करता है और हिम्मत करके आकर आपको कहेगा, एक बात बतानी थी आपको। आप कहेंगे बोलो, फिर वो सारा एक्सप्लेनेशन देगा, ऐसा हुआ था ऐसा हुआ था, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन उस समय मैं सच बोल नहीं पाया, मैंने झूठ बोल दिया। ये सारी बात सुनने के बाद अगर आप इतना कह दो, चलो बहुत अच्छा किया कि सच बता दिया आपने, बहुत अच्छा किया, उसको अप्रिशिएट कर लो, अब उसका डर बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। जैसे ही उसका डर कम होगा, दूसरी बार कोई इमीडिएट सच नहीं बोलेगा, लेकिन झूठ भी नहीं बोलेगा, चुप रहेगा। तीसरी चौथी बार उसके अंदर हिम्मत आएगी सच बोले, तो आप धीरे धीरे कमजोर व्यक्ति को भी क्या कर रहे हो, उस कमजोरी से बाहर निकाल रहे हो। इसलिए बाबा की पहली मुरलियां जो चली क्रोध मुक्त, आज भी बाबा ने कहा कि क्रोध भी विकार कोई कम नहीं है, क्रोध विकार भी बहुत बड़ा विकार है। लेकिन आप गुस्सा करेंगे तो सामने वाला का डर बढ़ेगा, उसको एम्पावर नहीं कर पाएंगे, उसको परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपकी पॉजिटिव ऊर्जा से उसको भी शक्ति मिलेगी, हिम्मत मिलेगी, और धीरे धीरे वो भी परिवर्तन हो जाएगा। तो इसीलिए समर्थ व्यक्ति दूसरों को भी सशक्त करता है। व्यर्थ चलाने वाला ऐसी नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करता है जो अनेकों को नुकसान कर देती है। तो इसीलिए बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, वाह वाह के गीत गाओ का मतलब है बी पॉजिटिव। जितना हो सके आप अपने सद्गुण के अंदर सशक्त होकर के उसमें रहो, तो आपका व्यर्थ भी नहीं चलेगा, दूसरों को भी एम्पावर कर लेंगे, सशक्त कर लेंगे, और उसके कारण आपका जो कार्य क्षेत्र का माहौल है वो भी आप देखेंगे धीरे धीरे परिवर्तन हो जाएगा। क्योंकि आज की दुनिया में झूठ बोलना आसान है, सच बोलने की हिम्मत नहीं है। वैसे अगर देखा जाए ना, झूठ बोलना बहुत कठिन है, सच बोलना आसान है। अनुभव ये कहता है झूठ बोलना बड़ा कठिन है। क्यों? क्योंकि एक झूठ 100 झूठ बुलवाता है, हर बार याद रखना पड़ता है पिछली बार मैंने ये बोला था, पिछली बार मैंने ये बोला था, उसके पहले ये बोला था, ताकि कहीं मैं अपनी बात को ही काट न दूं कि दूसरा कहे अरे पिछली बार तो तुमने ये बोला था, फिर मुझे याद आता हाँ मैंने बोला था, फिर झूठ बोलना पड़े। तो झूठ बोलना कितना कठिन है, लेकिन सच बोल दो फ्री, सच बोल दिया, दूसरी बार याद रखना नहीं, जो जैसी बात है वैसे बोल। तो सच बोलना आसान है, झूठ बोलना मुश्किल है। आज वकील लोग उसी का तो पैसा लेते, जो कठिन चीज करनी है उसका ही तो पैसे लगता है ना, कि हर बार उनको याद रखना पड़ता है कि मैंने क्या क्या झूठ बोला था, उसी का तो पैसा लेते। वो सच बोलने का थोड़ी पैसा लेते हैं, झूठ बोलने का पैसा लेते हैं, ठीक है ना। तो झूठ बोलना आसान नहीं है, झूठ बोलना बहुत कठिन है, सच बोलना आसान है। फ्री रहो, व्यर्थ संकल्प चलेगा ही नहीं, आप सच बोल के छूट जाओ। सच बोल दिया, जो है जैसा है वैसा बोल दिया, मन हल्का हो जाएगा, भारी नहीं होगा। झूठ बोलना बहुत कठिन है ना, हर बार याद रखना, कितनी मेमोरी लगती है बोलो। और आजकल लोगों के पास मेमोरी कम हो रही है, और इसीलिए अपनी बात में ही फंसते रहते हैं, फिर सामने वाले को ये व्यक्ति जो है ना हर बार झूठ ही बोलेगा, पकड़ा भी जाता है झूठ भी बोलता है, फिर भी संस्कार कैसा है। इसलिए संस्कार ये डेवलप करो सच बोलने का, तो फ्री हो जाएंगे, व्यर्थ चलाने की जरूरत नहीं। ये झूठ बहुत व्यर्थ चलाता है, बहुत व्यर्थ चलाता है ना। तो इसलिए सच बोलना आसान है, झूठ बोलना बहुत 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 कठिन है। और सबसे बड़ी बात, वकील वाले तो फिर भी पैसा ले लेते हैं, आपको तो कोई पैसा भी नहीं देता है झूठ बोलने का। बताओ, कोई पैसा देवे तो बात ठीक है, लेकिन कोई पैसा भी नहीं देता है आपको झूठ बोलने का, कोई इनकम नहीं है, तो क्यों झूठ बोले हम? अगर इस एंगल से देखा जाए तो बाबा जो कहते संस्कार परिवर्तन आसान हो जाएगा, कि कुछ मिलता ही नहीं है झूठ बोलने से। कई लोग ऐसे ही झूठ बोल देते, क्या कहते हैं, उसको क्या फर्क पड़ता, मैंने झूठ बोला उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ा, उसको तो फर्क नहीं पड़ा लेकिन मुझे तो पड़ा, मेरे तो संस्कार बने। और बाबा जो कहते हैं एक का 100 गुना हिसाब, याद रखो कि एक झूठ बोला कोई इतना पाप नहीं है, थोड़ा सा ही पाप है, छोटा सा पाप है, लेकिन उसका 100 गुना करो तो कितना हो जाएगा। और इस तरह से हर बार झूठ बोल करके 100 गुना 100 गुना 100 गुना इकट्ठा करो तो कितना बोझ हो जाएगा, योग लगेगा, योग लगेगा नहीं लगेगा। क्यों झूठ बोलने का, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर उसको सच भी बोल दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, झूठ बोला तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो सच ही बोलो ना। क्यों हम छोटा पाप करते हुए भी 100 गुना इकट्ठा करें और उसका बोझ स्वयं, तो मुझे तो फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, मुझे तो पड़ रहा है ना। तो इसीलिए बाबा कहते हैं ये सारे व्यर्थ के जो कारक है ना, इस कारक को क्या करो, भी बिंदी लगाओ, समाप्त करो, समाप्त करो, बस ये हिसाब को बढ़ाना, ये गुह्य गति समझना है। ये ज्ञान की गहराई को जितना समझेंगे उतना आप स्वयं में ही देखेंगे परिवर्तन, सहज हो जाएगा और बाबा की दुआओं के पात्र सहज बन जाएंगे। ठीक है, ठीक है, अच्छा, ओम शांति।